आज का प्रातः क्लास है 14 मई 1968। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ कर समझाते, जिस्मानी स्टेज में बैठे हुए हैं, दैहिक याद में बैठे हुए हैं, उनको नहीं समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी बाप है, सदैव रूहानी स्टेज में रहता है। वो सुबह को बैठकर मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सन्मुख हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे, सभी अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं, नहीं, कोई देह के धर्म में रहते हैं, कोई स्वधर्म में रहते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धि जाती जरूर होगी, अपनी देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कहीं न कहीं बुद्धि भटक जाती है। तो हरेक अपने को समझे, मूल बात है सत्व प्रधान बनने की, तो याद की यात्रा से ही बन सकेंगे। बल बाबा सुबह को बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर बार ही खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में बच्चे क्या क्या करते हैं? वो तो वही सुबह को आधा घंटा याद की यात्रा, जिसमें आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु फिर सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं कि बाबा के सभी कुछ जानते हैं, अपने अपने दिल से पूछना है, सारा दिन हमने क्या क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रंग लिखते हैं, समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही है, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु सचमुच याद में थे, बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। तो अपन को ठगना नहीं है, हम तो शिव बाबा की याद में रहते हैं। देह के सभी धर्मों को भूल जाना है, हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपन को, आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं, सभी आत्माएं बाप को याद करें, और कोई भी याद ना आए। परंतु सचमुच याद आती है व नहीं याद आती है, वो तो खुद ही जाने। ऐसे नहीं बाबा जान जाना ना आ रहे, अपन की संभाल आपे ही करनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर सारा दिन क्या करते हैं वो देखना है, तो खुद पोता मिल निकाले। इतना हम बाप को याद करते हैं, जैसे आशुक मासुक का मिसाल दिया जाता है। ये आशुक मासुक है रूहानी, इनकी बात ही न्यारी है। वो जिस्मानी, ये रूहानी, देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद करने बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हो और यहां तो याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी है और बहुत बहुत सूक्ष्म है, नॉलेज तो बड़ी विस्तार में है। श्री नारायण व लक्ष्मी विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपन को मियां मिट्ठू समझ करके ठग नहीं लेना, अपन से पूछो सारे दिन में हम कितना समय अपन को आत्मा समझ बाप को याद किया जो पट निकले, कितनों को आप समझ बनाया। ये पोता मेल हरेक को अपना रखना है, बाकी बाबा थोड़े ही बैठ देखेंगे एक एक कर, हरेक को अपने लिए रजिस्टर रखना है। डायरियां तो है ही, ये डायरियां स्थूल काम में भी आ सकती हैं तो सूक्ष्म काम में भी आ सकती हैं। अब जो करेगा सो पावेगा, नहीं करेंगे तो पछतावेंगे। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कितना रहा, उनको दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेंगे, बाबा ने तो रास्ता बताया। आशु माशु एक दो को याद करते हैं, याद करने से उषा खड़ा हो जाता है। दोनों स्त्री हैं तो भी साक्षात्कार हो सकते हैं, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र तो भाई से भी तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में कितना लव हो जाता है, इतना लव हो जाता है जो भाई भाई में भी न हो सके। एक को बहुत प्यार से अच्छा उठा लेते, बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करते हैं। चकमक है वो एवर प्योर है तो खींचते हैं, बाप तो ऐसे ही कशिश करेंगे जो तुम एकदम पकड़ लो, पर कितने सभी कैसे पकड़ेंगे। बाप तो बेहद का है, वो तो समझते हैं ये बहुत ही लवली बच्चे हैं और ये लवली लव बच्चे बहुत जोर से याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, प्यार में कशिश होती है। ये तो थोड़े ही टाइम के लिए, बाबा ने ये प्रोग्राम क्यों रखा है, क्योंकि याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हैं। आशुक मासुक कहाँ भी बैठे याद करते, तो यहाँ भी ऐसे बाप को याद करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश हो। और तो कोई उपाय ही नहीं है, बहुत बहुत महीन बात है। तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हम याद को भूल जाते हैं, तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तलवार की धार से पाप कटेंगे तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पानी से पार करते हैं, तुम्हारा भर बुद्धि को योग में ले जाना है बाप के पास। चौदह मई 1968 की वाणी का दूसरा दिन, बाप आए हैं यहां हमको शिक्षा देते हैं, ऊपर में तो नहीं बैठे हैं, यहां इस दुनिया में आए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आया हुआ हूं। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया, चैतन्य हीरा इस डबली में बैठा है, बाकी सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा घंटा पौना घंटा, परंतु सारा दिन व्यस्त गवाया तो क्या फायदा हुआ। बच्चों को अपने चार्ट का बहुत होना रखना है, ऐसे कि नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार, ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है, और महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, बहुतों का तो नाम रूप में टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सभी को समझाई देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट समझाई नहीं, ये है मुख्य बात। याद और षष्ठ चक्र, इस षष्ठ चक्र को 84 जन्मों को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, और बैरागी भी तुमको आवेगा। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में अभी रहने का नहीं है, जाने से पहले हमको पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए, क्योंकि नंबरवार माला में फिर होने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आना है। फिर नंबरवार तुम्हारी पूजा होती जाएगी, क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते हैं तो चंडिका ठहरे ना, कोई सुधरते नहीं है तो कहा जाता है ये तो कोई चंडी है। सुनते ही नहीं है, कोई बात मानते ही नहीं है, ये फिर है बेहद की बात। अगर नहीं करेंगे करेंगे तो बाप कहेंगे ये बाप के भी मानने वाला नहीं, फिर पति कब हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी, बाबा सवेरे आकर के कितनी मेहनत कराते हैं, याद किया था। ये बहुत बड़ा माल है, नालिद को तो सुस्ती ही सब्जेक्ट कहेगी, ऐसा सस्ता सब्जेक्ट है। 84 चक्र को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बड़ी बात है याद की यात्रा। बहुत महंगा सब्जेक्ट है, इसमें फेल भी होते हैं, और तुम्हारी युद्ध भी इसी याद की यात्रा में है। तुम कितना याद करते हो और माया पछाड़ देती है, नारंज में तो युद्ध की बात ही नहीं है, तो शोर साफ इनकम है, और यहां तो पवित्र बनने की बात है, लायक बनने की बात। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हैं कि सिर्फ आकर के पढ़ाओ। नहीं, कहेंगे आओ और आकर के पावन बनाओ। तो ये सभी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बहुत सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है वो भी कर्म अनुसार है। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए। जो तुमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, इसलिए बाबा भी अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठावेंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स बैठती होगी, लिखते हैं तो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करती है, फिर पॉइंट्स का वजन करें। परंतु इतनी मेहनत तो कोई करती नहीं है। मुश्किल कोई नोट रखते होंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालकर अलग रखते होंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने के पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी ऐसी मेहनत तो करते नहीं है, और सभी पॉइंट्स किसको याद भी नहीं रहते हैं। वरिष्ठ लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं। तुमको तो बहुत ही जरूरी है, टॉपिक लिख करके फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछाल नहीं खावेंगे, तुम्हारा बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं तो सरलता से चलते हैं, सर्विस विगर और किसी भी बुद्धि में रहता ही नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो बच्चों को मत देते हैं, फिर कोई के दिल से लगती है व नहीं लगती है वो तो खुद जान। भला अपना धंधा धोरी यादी करो, डायरी तो सदैव ही पॉकेट में रहनी चाहिए नोट करने के लिए। और सबसे जास्ती तो तुमको नोट करना है। अपने को मियां मिट्टू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है। भूसा लगाती रहेगी, लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। बड़ी बड़ी भारी सल्तनत स्थापन होती है, कोटों में कोई निकलेंगे। हमको तो इस समय कोई ऐसे देखने में आते नहीं है, कहेंगे मम्मा क्या करती थी, पॉइंट्स लिखवाती थी तो किताब में ही रहता था, रोज देखती थोड़ी ही थी। बाबा तो कहते हैं नोट करके फिर देखो। लिखने की मेहनत चाहिए। बाबा भी सवेरे सवेरे 2 बजे बैठ करके लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाते थे तो फिर लिखते थे तुमको समझाने के लिए। जो भी बच्चे गए हैं जल्दी में क्यों गए, जरूर कोई कारण होगा, जाने का कोई कारण होगा ना। अच्छा, जाते हैं तो कहाँ गए हैं, उनकी याद की यात्रा की कहाँ वो कर्मातीत अवस्था है। मुफ्त में किसी की बड़ाई भी नहीं करनी होती है। 14 मई 1968 की वाणी का तीसरा पेज, इसमें बड़ी मेहनत है। इनको भी कर्म भोग कहा जाता है, भोगना तो इनको भी पड़ता है, फिर याद भी करना पड़ता है। अच्छा, समझो मुरली ब्रह्मा नहीं चलाते हैं, शिव बाबा चलाते हैं, परंतु ये नंदी भी तो चलाते होंगे। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि सदैव शिव बाबा ही समझो, वो ही सुनाते हैं। तब बीच बीच में ये भी बोल देते हैं, बाबा भी बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। ये बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा। कच्ची पक्की पॉइंट्स कब निकल जाती होगी तो समझो ये इनकी है, इनकी ब्रह्मा बाबा की। इनको तो सारा दिन बहुत ख्याल करनी पड़ती है, ढेर के ढेर बच्चे हैं और कितनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ब्राह्मणिया भी नाम रूप में फंस पड़ती है, चलायमान हो जाती है, जैसे कि फिर तोता बनकर के बैठ समझाती है। बच्चों के लिए मकान बनाने, आज की ये सेवा करनी है तो ये भी ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर तो कोई भी चीज होती नहीं। सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आ रहे, कई बच्चे सच नहीं बताते। सबसे जास्ती तो तूफान किसको आवेंगे? अरे माया, सबसे जास्ती परीक्षा किनकी लगी है? सबसे जास्ती परीक्षा इनकी लेगी, इनकी माने राम और कृष्ण की आत्माओं की। नहीं तो औरों को समझाऊं कैसे? फिर स्वप्न भी ढेर आते हैं, ये सब माया है ना। ना आने वाले को भी आवेंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई तो मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगा। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। सबसे प्यारा है बाबा, स्त्री पति को कितना प्यार करती है तो खड्डे में डाल देते हैं। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। तो बाबा 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 कह करके अंदर में बहुत महिमा करनी पड़ी, बहुत बहुत लव रहना है। जो याद करते हैं तो उनको कशिश होगी, यहाँ आते ही है बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अभी गफलत नहीं करना। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा सबकी जांच तो करते हैं ना, शिकल से भी देखते हैं कि इनका बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सभी भूल जाते हैं। बाप अगर बिगर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी अलौकिक बड़ी मीठी होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग तो अलग बात, ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। ये है बेहद बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की तो बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो जरूर शिव बाबा की रथ पर सवारी होगी, बिगर शरीर तो आत्माएं वहां मिल सकती है, यहाँ तो सभी शरीरधारी हैं, जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना पड़ेगा, बहुत प्यार से मेहमा करनी है, बाबा हमको क्या देते हैं। भक्तों को थोड़ी मालूम पड़ता है कि हमको क्या मिलता है, उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता, समझो करके साक्षात्कार होता है, मिलता तो कुछ भी नहीं, पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं। अभी तुम तो जानते हो बाबा आया हुआ है, इसे जंगल से ले जाते हैं, कहते भी हैं मंगलम भगवान विष्णु, ये कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला हरि है, सभी का कल्याण हो जाता है, और एक ही बात है उनको याद करना है, नालिश धारण करनी है, हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर हमारे में कोई खामी है। बाप कहते हैं याद की यात्रा का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशी से नहीं होती है, कहेंगे ये भी ड्रामा, अभी फिर अच्छी तरह से जौहर धारण करो, याद की यात्रा यही मुश्किल बात। हम भाई को ज्ञान देते हैं, हम सभी भाई भाई हैं, भाई को बाप का परिचय देते हैं, बाप से ही वर्षा पाना है, बाप अपील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाप कहते हैं मैं तो सभी को बच्चा समझता हूं, क्या कोई को बच्ची नहीं समझता हूं, बच्ची बच्ची तो यह कहता होगा कौन है, ब्रह्मा बाबा तो बच्ची बच्ची कहता होगा, मैं तो सिर्फ बच्चे के रूप में ही देखता हूं, ये बाप थोड़े ही है, कौन कौन बाप नहीं है, ये ब्रह्मा कोई बाप थोड़े ही है, ये उथल पाथल बाबा के आगे बहुत आती है, वंडरफुल पार्ट है। बाप तो कहेंगे मेरे सभी बच्चे हैं, ये कहेंगे कि बहन भाई है, तो वंडरफुल पार्ट है ना, भाई भाई कह करके बात करता होगा, ये भी हीरा हुआ है, देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है, कौन है ब्रह्मा बाबा, कौन से सन की बात बोली है, सन 68 की बात है, 68 पूरे होते ही 18 दिन में से भी छोड़ दिया, तो बोला देही अभिमानी तो अभी बना नहीं है, बहुत थोड़े समझते होंगे, क्या ये ब्रह्मा भी अभी देही अभिमानी बना नहीं है, ये अक्षर किसके है, बाबा तो कब बच्चे बच्चे ही कहेगा, आया ही है बच्चों को वर्षा देने, अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग में नमस्ते,
आज का रात्रि क्लास है 22 मई 1968। कोई करोड़पति बड़ा आदमी उसको अर्धांग हो गया, तो बताओ उसने क्या सुख पाया, इतनी मेहनत की करोड़ों रुपया इकट्ठा करने की, अपने बच्चों के लिए और ऐसे ऐसे आदमी मर भी जाते हैं। ये तो बच्चे अभी समझते हैं, हम जा रहे हैं, उस पार केवैया के स्टीमर में बैठे हैं। बच्चे जानते हैं ये स्टीमर एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग में मिलता है। शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है इस नाम से, शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर, डूब सकल संसार। इतनी तो इस स्टीमर की महिमा है। फिर सिखों ने गायन किया है नानक चाप जहाज, बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में पुरुष रूप आत्माओं के बीच जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी हर धर्म में माला स्मरण की जाती है, माला के मण के उन श्रेष्ठ नंबरवार आत्माओं की यादगार है। अब तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया को जाना भी जरूर है। यहां तो खंड खंड हो गया है, शांति धाम और नई दुनिया सतयुग में जब हम थे तो कोई खंड नहीं था। अभी हम राजभाग योग बल से ले रहे हैं। बाप ने समझाया है योग बल से तुम विश्व की राजा ही पा सकते हो, बाहुबल से कोई भी हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी ने संसार के ऊपर राज्य नहीं किया। बहुत बहुत प्रयास करके मर गए, सफल नहीं हुए। और तुम बाप के सिखाए हुए राजयोग बल से सारे विश्व के महाराजा नारायण नर से बन जाते हो। तो देखो ये खेल है, सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू से लेकर सुनाते हैं। और इस सारी हिस्ट्री में ऊंचे ऊंचे है बाप, जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। उनकी तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा द्वारा नई नई सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। तो ऊंचे थे ऊंचे बाप ठहरा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। और इनको भी तुम बच्चे जानते हो, ये तीनों हस्तियां इस संसार में कहां काम कर रही है? इन त्रिमूर्ति शिव के प्रारूप को दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे ही झंडा उठाकर गायन करते रहते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला तीन रंग का ये कपड़ों वाला झंडा। अब कपड़ा किसको कहा जाता है ये भी पता नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम व्रतम विद्धि। शरीर को कपड़ा समझो, आत्मा ये कपड़ा ओढ़ने वाली है। अभी तुम तो जानते हो इन तीन मूर्तियों के द्वारा स्वर्ग में हमारा राज्य स्थापन होता है। हमारा राज्य स्वर्ग में था, फिर हम देवान में आए तो सीढ़ी नीचे उतरे। ये सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये बात हमारी बुद्धि में भी आगे नहीं थी। आगे से तो कथाएं थी, अभी तो तुम्हारी बुद्धि में वो सब बदल गया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है, और इस हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारा कब और कहां कैसा पार्ट फिरता रहता है। तुम्हारा पार्ट है हीरो हीरोइन का, जो हार खाते हैं फिर जीत पहनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कब होकर के गए हैं यह भी कोई नहीं बता सकते सिवाय तुम बच्चों के। सिर्फ कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु सतयुग कब हुआ लाखों वर्ष की बात बताई देती है। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है, इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदत्त पिता, मैं मनुष्य शक्ति का बीज डालने वाला पिता हूं। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है, और सारी मनुष्य शक्ति का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो, जो जान गए हैं इस मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पाठ बजाय रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं। बाप ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, जो धर्म आज प्रायः लोप हो गया है, माना बहुत करके लोप हो गया है, देखने में नहीं आता, परंतु फिर भी कहीं न कहीं निशानियां बची हुई है। ये पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, जो मुश्किल को सहज करने वाला है, पढ़ाई का नाम भी है सहज राजयोग। अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत पर हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्व माने आत्मा, ये आत्मिक राज्य है, बाहुबल के आधार पर चलाया जाने वाला ये कोई पुलिसिया राज्य नहीं है। भगवान जो राज्य स्थापन करते हैं उस राज्य में सब यथा राजा तथा प्रजा अपन को मालिक समझते हैं। जैसे श्रेष्ठ परिवार का बच्चा भी अपन को मालिक समझता है, ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप आते हैं। कहां से आते हैं, कौन सा बाप आते हैं? मनुष्य शक्ति का बाप तो मनुष्य शक्ति पर ही रहता है, फिर आने जाने वाला बाप कौन है? वो बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है, कभी भी देहभान में आने वाला नहीं, क्योंकि उसको अपनी देह है ही नहीं, वो सदैव निराकार निरंजन है। स्वार्थ से रहते हैं। जिनको अपना शरीर रूपी रथ होता है वो तो देवभान में भी आते हैं, स्वार्थ की ही बातें करते हैं। जैसे तुलसीदास ने भी लिखा, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। वो ऐसा बाप है जिसको कोई स्वार्थ नहीं। इस सृष्टि पर आता है सिर्फ परमार्थ के लिए, उनकी कोई कामना नहीं। स्वर्ग की स्थापना भी हम बच्चों के लिए आकर करते हैं, नरक का विनाश भी हम बच्चों के लिए करते हैं। वहां नई दुनिया में सुख ही सुख होता है, और वो सुख होता है सही स्थिति से। अभी वो स्वयं स्थिति में स्थित रहने की प्रक्रिया बाप सिखाते हैं। अभी सभी बच्चे जहां भी रहते हैं जानते हैं हम सदैव के लिए हर्षित बनने वाले। यहां बाप के आप पास आकर के तुम हर्षित बनना सीखते हो। नई दुनिया में तो तुम हर्षित रहते ही हो। ये कर्मों का अथवा भक्ति का फल है। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी पूर्व जन्मों में और इस जन्म में, वो ज्ञान भी बहुत उठावेंगे। और ज्ञान तभी ही उठावेंगे जब उनको इस दुनिया से वैराग आवेगा। कहते भी हैं बिनु वैराग विवेक न होई। ये वैराग भी तभी ही आता है जब बाप के स्वरूप की सच्ची पहचान होती है और इस झूठी दुनिया का ज्ञान हो जाता है। इस झूठी दुनिया में सब झूठे ही झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। 100% सत्य है एक बाप, उसको कहते भी हैं गॉड इज द ट्रुथ। गॉड इज वन, एक ही सच्चा है और एक ही भगवान है जो सदैव सच्च है। और सच्चे खंड की सत्ययुगी की स्थापना करने वाला है। बाकी कोई भी दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं है, बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, दुनिया पुरानी ही होती चली गई, गिरती ही चली गई। पुरानी दुनिया को नई दुनिया किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि सब झूठे हैं। एक सच्चा गॉड फादर है, परमपिता परमात्मा ही सत्य है, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। वो आकर के जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देते हैं। फल मिलता है ज्ञान,
और ज्ञान आता है एक से, अज्ञान आता है अनेकों से। तुमने तुमने मतिर्भिन्न, उसे एक की पहचान उसे एक के सिवाय कोई दे नहीं सकता। कहते भी है जे ही जाना होते ही जे उजन आई, तो नब्ज देखी जाती है। जो सतयुग में आने वाला होगा तो उनको इस ज्ञान की झट धारणा हो जाएगी। बाप को पहचान लेगा, बुद्ध रूपी झोली भरने में लग जाएगा। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली भर दे झोली। अब शंकर तो खुद ही तीन पत्तों में से एक पत्ता है। शिव के ऊपर कौन सा पत्र चढ़ाते हैं? ये बेल्व पत्र है जिसमें एक ही डंडी के साथ तीन पत्ते जुड़े हुए होते हैं। वो मनुष्य सचरूपी पहले उन तीन पत्तों की यादगार है जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। ये तीन पत्तों ने ही इस मनुष्य शक्ति में परिवर्तन काल में पहले पहले अपने को 100% स्वाहा किया। उस यादगार में भक्त लोग आज भी उन तीन पत्रों को बिल्व पत्र जिन्हें कहा जाता है शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ही जीवन शिव की श्रीमत पर अर्पण कर दिया। उन तीन पत्रों में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पत्र माना जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर के साथ शिव का नाम ऐड किया जाता है, विष्णु और ब्रह्मा के साथ शिव का नाम ऐड नहीं किया जाता। तो जरूर वही बाप का एक ऐसा बच्चा है जिसने बाप की श्रीमत पर बाप समान स्टेज बनाई है। शिव है बाप, शंकर है त्रिदेव में से पहला पहला बच्चा। भक्ति मार्ग में तो दोनों को मिला के एक कर दिया है, समझते वो ही शंकर है वो ही शिव है। परंतु ये नहीं समझते कि शिव माना क्या और शंकर माना क्या। शिव तो सदैव कल्याणकारी है, शिव नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी। शंकर का अर्थ ही है शमन करो, संसार का विनाश करा देता है। अब बताओ भोला किसको कहेंगे भाला किसको कहेंगे? टाइटल तो लगाया हुआ है क्रम से शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर में पहला नाम किसका है और भोले भाले में पहला नाम किसका है? तो कौन हुआ भोला? शिव है भोला। कुछ भी नहीं लेता है, बच्चों को सब कुछ दे कर जाता है। और शंकर है भाला, सबका ही माथा मोड़ लेता है। तिरुपति मंदिर यादगार है, जो भी वहाँ जाते हैं क्या होकर आते हैं, माथा मुड़ा करके आते हैं। अब शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, वो क्या झोली भरेगा, वो सबकी झोली खाली करने वाला है या भरने वाला है, भरने वाला कौन है, शिव है झोली भरने वाला, शंकर की भी झोली भरने वाला शिव है। भले भक्ति मार्ग में कह देते हैं शिव शंकर एक है, परंतु समझते नहीं है कि शंकर को याद में बैठे हुए क्यों दिखाया है, किसकी याद में बैठा है, जरूर अपन से कोई ऊंचा है जिसकी याद में बैठा है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव शंकर एक है, अगर एक होता तो शिव शंकर ही क्यों कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं कह देते, क्यों कहते हैं शिव शंकर, शिव है बड़ा और शंकर है बच्चा, जो भी आत्माएं बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उन बिंदु बिंदु आत्माओं में पहला पहला बच्चा है शंकर। भक्ति मार्ग में तो सूक्ष्म वतन में सर्प बैल आदि दिखाई दिए हैं, अब वहां बैल और सर्प कहां से आए, सूक्ष्म वतन तो फरिश्ताओं का देश है, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, एकदम जो प्योर बन जाएंगे उनकी निशानी है एक बाप दूसरा न कोई। तुम बच्चों को भी ये अवस्था पक्की करनी है, ऐसी अवस्था बनेगी तो मित्र संबंधी आदि कुछ भी न रहेंगे बुद्धि में, बांधे ले तो वास्तव में सभी है, सबको कोई न कोई बंधन है, सब बेहद के बांधेले बांधेलिए हैं, ऐसा कोई है जिसको कोई बंधन न हो, अगर कोई बंधन नहीं है तो इस दुनिया में बुद्धि क्यों बंधी हुई है, फिर तो आत्मा कहां उड़ जानी चाहिए। और ये बांधेली होना भी अच्छा है, क्योंकि सबसे जास्ती याद कौन करते हैं, बांधेलियां ही बाप को सबसे जास्ती याद करती है, याद से ही सारा काम संपन्न होना है। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, कहीं कि पिकनिक पर गए बुधवार के दिन 22 मई 1968 की ये वाणी है। कोई कोई भी हालात में बच्चों को परफेक्ट बनना है, इनको जो बाप को पहचानने वाले बाप के बच्चे हैं उनको कोई भी हालात में परफेक्ट तो जरूर बनना है। उन परफेक्ट बनने वालों को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, यहां जैसे परफेक्ट होकर के जाना। साक्षात्कार में बच्चे देखते हैं संपूर्ण मम्मा बाबा, परंतु ये गुह्य बातें हैं समझने की। इन बातों को समझने में तुम बच्चों को मेहनत करनी है। तो संपूर्ण मम्मा बाबा कौन और अपूर्ण मम्मा बाबा किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट है अपूर्ण मम्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा के चित्र नहीं बनते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती है। जरूर जो संपूर्ण बाबा है वो ही बड़ा बाबा है। ब्रह्मा बाबा हुआ छोटा बाबा और बड़ा बाबा है सारी दुनिया में विख्यात। जब बच्चे साक्षात्कार में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, भोग ले आते हैं, वहां संपूर्ण मम्मा बाबा को देखते हैं। तो वो संपूर्ण मम्मा है, संपूर्ण बाबा है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता तुमको भी बनना है। फरिश्तों में हड्डी मांस नहीं होता है, ठीक? चलते फिरते हैं कि नहीं? बिना हड्डी मांस के कैसे चलते फिरते? प्रकाश का शरीर होता है, लाइट का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। लाइट अर्थात ज्ञान की लाइट, मनन चिंतन मंथन की मस्ती में मस्त रहते हैं। दुनिया जैसे है ही नहीं, स्थूल दुनिया भूल जाती है, या तो नई दुनिया का मनन चिंतन होता है, या तो ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन होता है, या अन्य ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। ये है ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी ही रोशनी। तो ऐसा बनने के लिए बच्चों को मेहनत करनी है। यहां आते ही हो फरिश्ता बनने के लिए। यहां मैंने कहा है, यहां संगम युग में, फिर सत्ययुग में जाकर के देवता बनेंगे। यहां संगम में देवता नहीं बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं? बन सकते। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होता है या सिर्फ आत्मा ही पवित्र बनती है? तो यहाँ संगम युग जो 100 साल का है, उस 100 साल के संगम युग में 5 तत्व सतोप्रधान बन जावेंगे क्या? हैं? बन जावेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्यों के वाइब्रेशन, गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली जब तक ये दुनिया मौजूद है तब तक 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यहाँ संगम युग में तुम आते हो फरिश्ता बनने के लिए, और सतयुग में बनेंगे देवता। फरिश्ता बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए, सूक्ष्म वतन की भी नाली चाहिए, वहां जो संपूर्ण मम्मा बाबा देखते हैं वो एक अहम ऑब्जेक्ट है। जो याद की यात्रा से बनते हैं, वहां है मूवी, वो टाकी दुनिया नहीं है। यहां भी बच्चों को कहते हैं शांति से चलो, तुमको फरिश्ता बनना है तो जास्ती बात मत करो, यहां इस दुनिया में पहले पहले बायोस्कोप की मूवी थी, फिर बाद में टाकी बनी। तो यहां भी बच्चे अगर मूवी में रहें, थोड़ा बोलें, तो घर घर में बड़ी शांति रहे। फिर उनको कहेंगे सच्ची साइलेंस, अभी टाकी से मूवी में जाना है, मूवी से फिर शांति में चले जाएंगे। अर्थात पहले ये टाकी दुनिया में जोर शोर से अति के आवाज वाले धमाके होंगे, अति की आवाज होगी टाकी दुनिया, और अति के बाद फिर अंत आ जाएगा, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया रह जाएगी। तो मूवी से फिर तुम शांति में जाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बच्चों को ये भी रास्ता पार करना है, कौन सा? अति की टाकी दुनिया में से गुजरते हुए अंत में मूवी दुनिया में जाने का रास्ता पार करना है। ये अंत का रास्ता है, जिसने ये अंत किया उसने सब कुछ किया। बच्चों को ऐसा बनना है बादशाही के लिए, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़े, बाकी है तो सहज। कोई हाथ पांव चलाने आज की बात नहीं है, बुद्धि की मेहनत है। भक्ति मार्ग में तो ये बातें नहीं होती हैं, वहां तो झांझ मंझीरा झांझ तमाशे आदि करते ही रहते हैं। बच्चे भी जब यहां मूवी में हो तो वहां जावे, तो ये अभ्यास करना है यहां, और खासकर सवेरे। अच्छा ओम शांति।